दोस्तों आज मेरे साथ हैं अक्षय सिंह, जो एक बड़े फिल्म मेकर हैं। बहुत बड़ी फिल्म की बहुत बड़ी सफलता के बाद वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। अक्षय, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आपने कहा बहुत बड़े फिल्म मेकर, नहीं सर, मैं उस जर्नी में अभी निकला हूँ। और फिलहाल जो ये फिल्म बनाई है मैंने, पिंकी ब्यूटी पार्लर, अब तक तकरीबन 20 से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ट्रेवल कर चुकी है, बहुत सारे अवार्ड जीत चुके, सराहना मिली है। तो सर अभी बड़ा बना नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो है अभी रिलीज का। सबसे बड़ा बैटल होता है एक फिल्म मेकर के लिए, तो मैं उस प्रोसेस में हूँ, क्योंकि अब आ गया हूँ। अभी आपके शहर सिडनी में था 2 दिन पहले तक, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी और फिर मेलबर्न, तो वहां से आया मैं, वहां भी फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म बड़ी इसलिए है क्योंकि आपकी पहली फिल्म है बतौर डायरेक्टर, और उसने पूरी दुनिया में सराही गई फिल्म है ये। बहुत ही छोटे से बजट में, बहुत ही छोटे से शहर में एक इतनी शानदार फिल्म बना लेना किसी बड़े फिल्मकार का ही काम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
तो हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
पिंकी की जर्नी क्या है?
सर जर्नी अब क्योंकि मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, तो पहला बीज आया, जो पहला सीड आया वो भी मेरे दिमाग में ही आया, मेरे जहन में ही आया, और वहां से लेके अब तक जो कि अब फिल्म रिलीज करने की तैयारी में हूँ मैं, अब कमाल की जर्नी रही है। और मैं कहूंगा तो सिर्फ अप्स ही रहे हैं, डाउन्स रहे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो देखने का नजरिया होता है कि डाउन्स को आप किस तरीके से देखते हो। तो अब तक जो जर्नी रही है, चाहे स्क्रिप्ट लिखने की, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की, और उसके बाद वो डर लगता है क्योंकि फिल्म मैंने प्रोड्यूस भी की है, तो जो हमारी सेविंग थी उसी से हमने फिल्म भी बनाई है। तो बहुत लोगों ने जैसे कहा कि आप बड़ा रिस्क ले रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन अब क्योंकि वो पैशन और वो एक जो बिलीव था अपनी स्क्रिप्ट में, उसने ड्राइव किया ये सारी चीजें। और फिर जब फिल्म जब फेस्टिवल में ट्रेवल करने लगी, और जैसे आप कह रहे हैं कि पहली फिल्म है, तो बहुत सारे सवाल अपने जहन में भी आते हैं, अपने क्लोज जो लोग होते हैं उनके जहन में भी आते हैं, कन्फ्रंट भी करना पड़ता है आपको उनसे। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो बिलीव था या जो कॉन्फिडेंस था जो स्क्रिप्ट में, और क्योंकि वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, उसने मुझे काफी पुश किया। और फिर जब फिल्म फेस्टिवल में ट्रेवल करने लगी, और इतनी अपने मुंह से तारीफ करनी पड़ेगी तो क्या करें,
नहीं दुनिया तारीफ कर रही है, आप सिर्फ वो बताइए जो दुनिया बोल रही है, तारीफ हो जाएगी क्योंकि दुनिया तारीफ कर रही है।
जी एक्चुअली एक चीज सबसे बड़ी जो एक सोच थी जिसके अगेंस्ट भी मैं अगेंस्ट क्या कहूँ, जिससे मुझे फाइट करना पड़ रहा था, कि कई लोगों को जो फिल्म देखने आते थे उनको एक लगता था कि एक वो धारणा है कि फिल्म फेस्टिवल जो फिल्में होती हैं वो बहुत आर्टी फिल्में होती हैं, जो एक नॉर्मल पब्लिक की भी यही धारणा होती है, पर ऐसा नहीं था। मेरी फिल्म क्या बड़ी एंटरटेनिंग सी फिल्म है, ब्लैक कॉमेडी है, मैं कहूँ तो मल्टी जॉनर है, ब्लैक कॉमेडी है, सटायर है, उसमें सस्पेंस एलिमेंट भी है। तो वो जो ऑडियंस का रिएक्शन मिलता था फिल्म देखने के बाद, वो मेरे लिए अमूल्य था। तो जितने भी अवार्ड मिले और ये जो पब्लिक का रिएक्शन मिला, ये अमूल्य है किसी भी फिल्म मेकर के लिए। जैसे अब मैं थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करूं कि जो फिल्म है मेरी किस बारे में है, जिन लोगों को नहीं पता है
जी,
कि भाई ये स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन पे, रंग भेद पे है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज है कि गोरा होना ही सुंदर होता है, ऐसी एक धारणा है। तो जो बेचारे लोग स्पेशली हमारे इंडिया में जो जिनका रंग जो है गोरा नहीं है, सांवला है या और डार्क है, वो बहुत सी चीजों से जूझते हैं जो उनकी मानसिकता पे बहुत असर करता है। तो मेरी फिल्म उसके ऊपर है कि उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, लेकिन मैंने कहने का अंदाज जो है वो बहुत ही वैसा रखा है कि एंटरटेनिंग है, क्योंकि सिनेमा एट द एंड ऑफ द डे एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है।
लेकिन ये तो कहानी आई कहां
के साथ अगर कोई जी, एक तो हमारे ये देखा जाए तो बहुत ही रिलेटेबल सब्जेक्ट है, हर घर की कहानी है, कि हर घर में जिसका रंग जो है वैसा नहीं है, जैसे एक दो तीन सेंटेंस जो है बड़े अजीब से फ्रेजेस है, मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा कि रंग साफ नहीं है, जो गोरा नहीं होता उसके लिए यूज किया था रंग साफ नहीं है, या कहा जाता है कि रंग दबा हुआ है। तो जो ऐसे टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, तो हम देखते हैं, मैं देखता हूँ बचपन से अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, आसपास हर जगह की ये चीज है। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि कोई मेरे बहुत करीबी थी, उनको वो डिप्रेशन में चली गई, तो जब मुझे डिप्रेशन का कारण पता चला, जो अच्छी खासी एजुकेटेड जॉब करना शुरू कर दिया था उस यंग लड़की ने, लेकिन उसके डिप्रेशन का कारण ये था कि यार बचपन से सुनती आई है कि वो क्योंकि उसका रंग जो है गोरा नहीं था, तो बहुत टैलेंटेड थी हर तरीके से, लेकिन उसका बेसिक डिप्रेशन का कारण ये था कि मैं थक गई हूँ कि ये सब ये जो फेयरनेस प्रोडक्ट है लगा लगा के, और यही चीज सुन के कि भैया कुछ करो तुम, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें ये नहीं होगा, हर चीज को रंग से जोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है कि भाई खूबसूरती का रंग से कोई लेना देना नहीं।
पर आपका रंग तो तथाकथित साफ है, अच्छा खासा है, आप एक एक्टर भी हैं
जी जी,
और अच्छी खासी फिल्में कर चुके हैं बतौर एक्टर भी। गाजीपुर का लड़का मुंबई पहुंचा कैसे?
ये भी एक सवाल है। एक्चुअली बचपन से ये पता नहीं कहाँ से ये बीज आया कि मुझे फिल्म मेकर बनना था, तो कभी एक्टिंग का लगता था, कभी लगता था ये, और ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आई थिंक फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में रहा होगा तब ये पहली बार, या जहां तक मैं सोच सकता हूँ एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, तो शायद वो पहली बार आया था कि यार हाँ एक्टिंग कर सकता हूँ। तो फिर ये कहा है कि फिर मैं ना अपने स्कूल में स्क्रिप्ट लिखने लगा, वो टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे पे, तो स्क्रिप्ट लिखना, तो लिखना भी मुझे लगता है कि हाँ यार लिख भी सकते हैं। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में आया तो पहली बार स्क्रिप्ट लिखी थी, जो देखा कि अरे परफॉर्म भी की गई। तो राइटिंग और एक्टिंग मेरा बहुत पहले से चलता आ रहा था स्कूल के डेज में। और फिर जो है, और मेरी स्कूलिंग है देहरादून की, कैमिन हॉल जो मेरा स्कूल है वहां पे मेरी पूरी बोर्डिंग स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। फिर ये हो गया कि नहीं, अब तो एकदम मन बन गया था कि अब बंबई जाना, लेकिन रास्ता ही नहीं पता था क्योंकि हमारे घर से ना कोई एक्टर है ना कोई किसी का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो फिर मैं दिल्ली आया जहाँ की मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए आना था, बट बेसिक आइडिया जो था वो था कि यार थिएटर उटर करेंगे और फिर बंबई चले जाएंगे। तो दिल्ली आए, दिल्ली में हमने थिएटर करना शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन तो चली रही थी साहित्य में, हमने थिएटर करना शुरू किया था बतौर एक्टर। और लिखता था मैं, लिखने का हमेशा से शौक था, तो लेकिन वो सीमित रहता था हमारे लैपटॉप तक ही। मुंबई आया तो हमें जो मौका मिल गया एज एन एक्टर, तो एक्टर काम करते रहे टेलीविजन में और कुछ फिल्मों में मिल गया, लेकिन राइटिंग हमेशा चलती रही। तो एक दफा फिर हमने किसी को ऐसे ही घोस्ट राइटिंग कह लीजिए या हेल्प वेल्प करना शुरू किया, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं यार इससे तो, इसके लिए तो पैसे भी मिल सकते हैं। तो फिर हमने राइटिंग भी करनी शुरू की, तो लेकिन वो गलतफहमी थी कि पैसे मिलते हैं, राइटर को सबसे आखिर में पैसे मिलते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस था तो हमने वो करना शुरू किया। तो मेरी पहली फिल्म जिसमें मुझे पैसे भी मिले और जो रिलीज भी हुई बन के, वो थी बात बन गई, जिसमें अली फजल थे, गुलशन ग्रोवर थे, कॉमेडी फिल्म थी। तो उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग मैंने किए थे अपने जो डायरेक्टर हैं उनके साथ, को राइट किया था मैंने। उसके बाद बहुत सी ऐसी फिल्में लिखी जो बनी ही नहीं कभी, और मैं डायरेक्शन करना चाहता था क्योंकि राइटिंग जब कर रहा था तो क्योंकि वो शायद वो डायरेक्शन की तरफ मेरा रुझान होता जा रहा था कि यार इसको इस तरीके से होना चाहिए, और क्योंकि एज एन एक्टर मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। तो फाइनली जब वो तीन चार फिल्में जो मैं लिख रहा था एक टाइम में, जब वो नहीं बनी तो मैंने कहा नहीं भैया आप मुझे डायरेक्शन खुद ही करना पड़ेगा।
लेकिन आपकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरे ख्याल से इस पूरी जर्नी में।
जी जी जी, बहुत बड़ी रही है क्योंकि वो खुद ही एक बहुत कमाल की राइटर है, टेलीविजन लिखती है, वो बहुत ही कमाल की राइटर है। स्पेशली जब पिंकी के लिए क्या हुआ कि उन्होंने मेरा 12th या 13th ड्राफ्ट पढ़ा।
अच्छा।
क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं था, मैं बोलता था एक बार पढ़ तो लो, मुझे किसी और की राय नहीं आपकी राय चाहिए। तो 12th और 13th ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा और उन्होंने, मैं उनको काफी हाई रिगार्ड में रखता हूँ एज अ राइटर, तो उन्होंने बड़ा कहा कि आई एम इम्प्रेस्ड। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बनाओ, मैंने ठीक है बनाते हैं। तो हमारा एक स्ट्रगल शुरू हुआ प्रोड्यूसर ढूंढने का और ये सब शुरू, एक फाइनली डे मैंने आके कहा कि यार हम खुद ही करते हैं।
अच्छा,
डिफिकल्ट था लेकिन बहुत मजा आया।
हाँ, लेकिन आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो कौन सी भूमिका आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी और अब क्या करेंगे?
देखिए, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग अगर मैं कहूँ तो वो है राइटिंग, क्योंकि दैट इज वेयर इट ऑल बिगिंस। जो प्रोसेस था मेरा पिंकी का कि वो राइटिंग टेबल पे इतना श्योर होना चाहता था कि मेरे एक एक, और मेरी नॉन लीनियर फिल्म है तो मेरा शॉट कैसे कटेगा, साउंड से कटेगा, म्यूजिक से कटेगा, ये सारी चीजें भी मेंशन थी स्क्रिप्ट में। वो प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग था कि आगे भी मैं वही कर रहा हूँ, अपनी अगली फिल्म के लिए भी मैं वही कर रहा हूँ।
क्या लिख रहे हैं
तो वो सबसे ज्यादा
शेयर करेंगे कि क्या लिख रहे हैं?
हाँ जरा बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, ऑलमोस्ट एक तरीके से अनाउंस करते हैं। मेरी अगली फिल्म है उसका नाम है बम चिकी चिकी बम।
और ये क्या है?
और वो जो है ये एक्चुअली फैमिली फिल्म है, आप कहें तो चिल्ड्रन फिल्म है, और 3D में शूट कर रहा हूँ और अभी तक उस तरीके से 3D में शूट नहीं हुई है ऐसा मेरे को कहा गया जो 3D टीम आई ऑन बोर्ड। उन्होंने कहा ऐसा किसी ने अब तक किया नहीं है इंडिया में, और चिल्ड्रंस फिल्म, क्योंकि हम यूजुअली जो चिल्ड्रंस फिल्म इंडिया में देखते हैं वो इम्पोर्टेड होती है, सारी हॉलीवुड की फिल्में होती है जो यहाँ बच्चे देखते हैं, और बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं फ्रॉम अ चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये सिबलिंग राइवलरी पे है, और सिबलिंग राइवलरी कहिए जेलसी कहिए, कि यूजुअली दो बच्चों की कहानी है कि एक 8 साल का बच्चा है और उसकी न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर आती है, उसकी कहानी है। तो कैसे उस बच्चे की लाइफ चेंज हो जाती है, नहीं ये जो न्यू बॉर्न बेबी आता है जो बेचारे ने सपने देखे होते हैं बेबी के साथ ये करूंगा वो करूंगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है लाइफ उसकी, उसको मेंटली कैसे अफेक्ट करती है उसकी कहानी है, लेकिन बहुत ही रोलर कोस्टर एकदम एंटरटेनिंग कहानी है।
हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पिंकी को और आपको, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अक्षय
सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शरीक किया अपने प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।